نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نماز نبی میں سے ہم اگلے باب نمازی کا لباس، اس پہ ایک ڈسکشن کریں گے، اور اس میں سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں اس کو اپنے لفظوں میں نوٹ کریں گے. سب باتوں کے حوالے بک میں موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی بات سنتے وقت اس کا ریفرنس چاہیے ہو تو ہم کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات اس چیپٹر سے جو ہمیں پتہ چلی اور وہ کیا ہے کہ کندھوں کے ننگا ہونے کی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی، یعنی ایون مردوں کے لیے بھی شولڈرز جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. دوسری بات ہم نے اس سے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ مجبوری میں جب کپڑا چھوٹا ہو کہ ڈر ہو اس بات کا کہ امام کا ستر کھل جائے گا، تو ان سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے جب تک کہ امام سیدھا ہو کے نہ بیٹھ جائے. اور اللہ اکبر، اس دور کی غربت کا حال دیکھیے کہ کپڑا اتنا مختصر ہوتا تھا کہ ڈر ہوتا تھا کہ امام کا ستر نہ کھل جائے، تو پہلے وہ پوری اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے، پھر پیچھے خواتین یا مرد جو بھی ہوں گے وہ پھر سر اٹھائیں گے. اگلی بات اس روایت سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ نماز میں مرد کے لیے، یا خاص طور پہ، یعنی یہ دونوں ہی چیزیں آئیں گی، کہ منہ چھپانا، یعنی منہ کھولنا چاہیے. آپ یہ کہہ لیں اس روایت کو اس طرح سے کہ نماز کے دوران نماز چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. اب آپ کہیں کہ عورتیں کیا کریں، تو آپ دیکھیے کہ عام حالات میں تو کھلا رکھنا چاہیے چہرہ، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ آپ جہاں نماز پڑھیں ایسا کونا ڈھونڈیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا نقاب ہی ڈھیلا کر لیں. جیسے آپ پبلک پلیسز میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے عموماً آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نقاب آپ پورا یوں کر دیتے ہیں سامنے، اب اس میں جب پورا ڈالتے ہیں تو دکھتا ہے، لیکن دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے اوڑھنی کی طرح سے اوڑھنا. بس آپ دیکھیے کہ جیسے یہ دوپٹہ ہے، اب اگر میں اس نماز پڑھتے ہوئے اپنے اس دوپٹے کو تھوڑا سا یوں کر لوں تو یہ سامنے سے میرا چہرہ کھل جائے گا جو میرا جائے نماز پہ آئے گا، لیکن یہ چیزیں اگر مجھے سائڈوں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے میرے لیے ایک پردہ بن جائے گا. تو اس طرح کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر میں اس کو پورا ڈال دوں اور میرے لیے سامنے نہ دکھے مجھے. اور جگہ بھی کچھ ایسی چوز کرنی چاہیے کہ سامنے کوئی نہ ہو. تو بہترین بات یہ ہے، یعنی عمل کی بات اس سے ہم نے کیا دیکھی کہ مرد ہو یا عورت، نماز کے دوران چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. لیکن اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو، جیسے حرم میں آپ چاروں ہی طرف سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ آگے بھی لوگ ہیں پیچھے بھی ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی چہرے پہ کپڑا ڈال کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہاں ایک لفظ صدل کا استعمال ہوا ہے، تو صدل کا طریقہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالے جائے کہ دونوں طرف لٹکتا رہے. اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ عورتیں نماز کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. پھر اگلی بات سیکھی کہ حتیٰ کہ عورت نماز کے لیے گھر سے نکلے لیکن اپنے آپ کو بڑی اوڑھنی میں چھپا لے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ عورت نماز پڑھتے وقت ایسا کپڑا یا ایسی، یعنی ایسا کپڑا پہنے گی کہ جس سے اس کے قدم بھی چھپ جائیں. یہ ہے وہ مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت ہی غیر معروف ہے. عورت کے لباس میں نماز کے دوران یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو چھپائے. پاؤں میں چھپانا کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپر کا چھپانا حصہ. یعنی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کپڑے پہننے میں عام طور پہ، تو اپنی آزار یعنی ٹراؤزر یا شلوار ڈھیلی کر کے اس سے پاؤں کو چھپایا جا سکتا ہے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب کھلے پانچوں کی شلواریں ہوں گی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ساکس پہن سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ابایا پہن لیں. ابایا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں سر سے پاؤں تک آپ چھپ جاتے ہیں. آج ہمارے عورت اور مرد کی نماز میں فرق پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے نا، وہ ستر کا فرق ہے، دیٹس اٹ. باقی رکعتوں کا اور ایکشنز کا کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی. یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے پاؤں چھپانا، یہ بعض لوگوں کو نیا لگتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک پیج دکھانا چاہوں گی جو میرے پاس الحمدللہ کافی عرصے سے ہے. یعنی اس ایک پیج میں وہ تمام روایتیں جمع کی گئی ہیں جو اس بات کی دلیل بنتی ہیں सवाल भी यही किया गया था कि क्या औरत के कदम सतर में शामिल हैं, कदम ढांप कर नमाज पढ़े या बगैर ढांपे। तो इसका जवाब जो बहुत सारी रिवायात से दिया गया, थोड़ी सी मैं पढ़ देती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, और जिसको ज़रूरत होगी फिर इसको आगे पेश अपने लिए हवाले के लिए आप लोग कॉपी करना चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि नमाज के मसले में अमूमन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा समझे के लाइल्मी है, और बाज़ दफ़ा चिपके हुए कपड़े होते हैं लॉन के, उसमें नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा छेद होते हैं, चिकन की शलवारें होती हैं, दुपट्टे भी जो नमाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इतने पतले होते हैं या उसमें भी इतनी सुराख होते हैं कि वो सतर को पूरा नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी नमाज़ों में खुशू अगर नहीं आता तो उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा लिबास भी है। इस पर एक अलग टॉपिक है, नमाज में खुशू कैसे, बल्कि एक सीडी जो है जन्नत के वारिस, उसमें भी इस पे बात हुई हुई है। अगर आप मज़ीद उसमें लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ चंद चीज़ें जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि औरत के कदम भी सतर में शामिल हैं, कदम ढांप कर नमाज़ पढ़े। मर्द और औरत के दरमियान इस सिलसिले में ये इम्तियाज़ है कि मर्द पांव खुले यानी टखने नंगे और औरत पांव बंद रखे। मर्द के लिए नमाज या गैर नमाज हर हालत में टखने खुले रखना है और टखने बंद रखना कबायर में से है। इसकी दलील अब इन्होंने लिखी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरत के हिजाब और सतर के बारे में ये फरमाया, कालत, वो फरमाती हैं, क्या इन्नमल खिमारू मा वारा शारा वल बशर, ओढ़नी दुपट्टा ऐसा हो कि जिससे बाल और चमड़ा छुप जाए। फिर इसके बाद एक और रिवायत इमाम मालिक की है, उसके अंदर भी हमें यही खुलासा मिलता है कि एक मौके पे हज़रत आयशा रज़ी हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान जो आईं, इन्होंने बारीक दुपट्टा पहना हुआ था, उम्मुल मोमिनीन ने उससे लेकर इसको फाड़ दिया और मोटे कपड़े का दुपट्टा इनको पहना दिया। फिर इसी तरह एक और रिवायत है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि औरत किन कपड़ों में नमाज़ पढ़े, उन्होंने फरमाया चादर और ऐसी लंबी कमीज़ में नमाज़ पढ़े जो इसके कदम के ज़ाहरी हिस्से को छुपा दे। तो इससे भी पता चला कि पांव छुपाए जाएंगे। एक और रिवायत है कि बालिग औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हैज़ से मुराद वो औरत जो सने बलूगत यानी हैज़ को पहुंच जाए, ये इससे मुराद है। फिर इसी तरह बहुत लंबा मतलब इसमें बहुत सारी और रिवायतें भी रखी हुई हैं, लेकिन सारी बातों का खुलासा ये कि पाँव का ऊपर का हिस्सा जो है वो छुपाया जाएगा, और सजदे के दौरान अगर नीचे का हिस्से खुल जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और सबसे आसान बात इसमें यही है कि आप अबाया पहन लें, जैसे नमाज के लिए एक दुपट्टे का एहतमाम करते हैं, इस तरह आप सॉक्स पहन लें, थोड़ी देर के लिए पहनने फिर उतार दें, आप फील करेंगे कि इससे खुशबू आएगा। तो ये चीज़ एक मर्दों से औरत की नमाज में डिफरेंट है। अगली चीज़ हमने इस बाब से सीखी कि जिंदा या मुर्दा शख्स की रान नहीं देखनी, यानी मर्द मर्द की भी और औरत औरत की भी ये जो थाइज होती हैं, रान जिसको बोलते हैं, इसको नहीं देखा जा सकता। इसमें एक छोटी सी बात जो अमूमन ख्याल नहीं रखा जाता कि बाज़ ख़वातीन खूबसूरती के लिए कभी कोई ऐसी आराइश करते हुए दूसरी औरतों के सामने अपने पूरी पूरी टांगों को खोल देती हैं, ये जायज़ नहीं। औरत का औरत से जो सतर है ना वो घुटने तक है, यानी पाँव से लेके जो आपके घुटने, इसको क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, इस नीस तक और इस तरह ऊपर का हिस्सा यानी उसमें, तो बीच का जो हिस्सा होता है यानी पेट से लेके दरमियान की और आपकी थाइस, ये औरत औरत के सामने भी नहीं खोल सकती। कुछ मजबूरी है जैसे बच्चे की डिलीवरी है या बीमारी की सूरत है, और उसमें भी एक एहतियात करते हुए ऊपर कपड़ा डाल के अगर किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ों में वक्त गुजारता है तो और बात है, लेकिन बिल्कुल किसी को खोल के उस तरह आगे पेश कर दिया जाना, ये औरत का औरत से भी सतर है। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी कि अल्लाह के नबी कभी जूता पहन के भी नमाज़ पढ़ते थे और कभी बग़ैर जूते के भी पढ़ते थे। और इससे एक और बात हमने सीखी कि ये यहूद की मुखालफत में करते थे, क्योंकि यहूद जूते और मोज़े पहनकर नमाज अदा नहीं करते थे। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी कि नमाज अदा करते वक्त अपना जूता उतार कर दोनों पाँव के बीच में भी रख सकते हैं, यानी आपको डर है कि गुम जाएगा या कोई उठा के ले जाएगा या कीमती जूता है तो आप उतारें, उसको बीच में अपने पाँव के रखें और नमाज़ पढ़ लें। अगर जूते में कोई गंदगी लगी हो तो इसको रगड़ के उतार लेना चाहिए। फिर अगली बात है कि जूते अगर उतारें तो उसको दाएं या बाएं नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने ही कदमों के बीच में रखें, क्योंकि दूसरे नमाजियों को इससे तकलीफ होगी। अगली बात है जूड़े के बारे में। नमाज के दौरान बालों का जूड़ा बांधकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ कल्चर्स में मर्द भी जूड़ा करते थे, यानी बालों को खोल देना चाहिए, तो ऐसे वक्त में उसको खोल दिया जाएगा। आपने मना फरमाया कि ऐसा मामला जो है उससे मुश्किल होगी। अब यहाँ सवाल जहन में उठते हैं कि औरतें अपने बालों को घर में हल्का फुल्का सा रोल करके क्लिप लगा लेती हैं या कोई पोनी लगा देती हैं, तो क्या वो भी इसमें आता है? तो वो इसमें नहीं आता इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे वो जूड़ा जो बिल्कुल सर के ऊपर कोहान की तरह, यानी ये जो गुद्दी होती है, और ये एक बहुत रिवाज था उस दौर में, आज भी है, तो इस सूरत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है? लेकिन हल्का सा अगर नीचे बालों को उनके सिरे रोल किए गए तो वो फिर इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ है। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि हत्तुल बसा ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह नमाज पढ़ी जाए वो बिल्कुल प्लेन हो, क्योंकि एक मौके पे अल्लाह के नबी ने धारियां वाली, ये जैसे हमारी ये सफ़ें होती हैं, इसमें कितनी धारियां हैं, मेरे लिए इसमें खड़ा होकर इंसान तो इसके कलर ही देखता जाए, कॉम्बिनेशन देखेगा, शेड्स देखेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा यमनी चादर में नमाज़ पढ़ी जिसमें बहुत लाइनें थी, तो बाद में आपने कहा कि इसने मुझे नमाज के खुशू से गाफिल कर दिया। मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप वो हिस्सा सुने कि नमाज में खुशू क्या, उसमें 15-20 डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी नमाज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो है नमाज नमाजों के अरकान और फ़र्ज़ और उसमें दुआओं का पढ़ना, लेकिन खुशू के बगैर पढ़ी हुई नमाजें जो हैं वो इंसान को वाकई गाफिल कर देती हैं। फिर इसी तरह अगली चीज़ हमने सीखी कि जहाँ नमाज पढ़ी जाए उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इंसान की तवज्जो को खींच दे। एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पर्दे के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उसकी चीज़ें फिर आपके तसव्वुर में आने लगीं। तो इसी से फिर कोशिश करनी चाहिए कि जाए नमाज भी बहुत ज़्यादा कलरफुल और फैंसी ना हो, प्लेन एक रंग के हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक अमूमन तसव्वुर है कि जाए नमाज बिछाए बगैर नमाज नहीं पढ़ते हम लोग, हालांकि आप देखिए कि घरों के जो साफ़ सुथरे कारपेट हैं, जहाँ रोज़ सफाई होती है, अगर घर में बच्चे भी हैं तो पाकी पलीदी का तो वैसे ही ख्याल रखना चाहिए, कोई इसका नमाज से तो ताल्लुक़ है नहीं, मुसलमान तो वैसे ही पाक होता है। तो अगर ऐसी जगह तो आप आम जगह पर भी पढ़ सकते हैं, इवन साफ़ सुथरा फ़र्श है, अगर आपने साफ़ किया, उसको माप लगाया, आप वहाँ पढ़ लें। बल्कि जितना आप खाली ज़मीन पर, खुली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते हैं, उतना अल्लाह ताला से कुर्ब और नेचर से, और यानी एक उसको फ़ील करने से भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन यह कि अगर जायनमाज बन रखें भी तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सिंपल से हों, एक कलर के हों, जितनी महमली और फॉर्म की और सुर्ख और नीली पीली जायनमाजें होती हैं उतना फिर हमारी नमाज जो है वो मुश्किल होती है। फिर अगली चीज़ इस चैप्टर से हमने सीखी कि गर्मी की शिद्दत अगर हो और सजदे की जगह पे अगर कोई कपड़ा बिछाना पड़े तो इंसान बिछा सकता है। अब इस पूरे चैप्टर पे ओवरऑल अगर हम देखें तो नमाजी के लिबास की बात है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर है मर्द के टोपी पहन के नमाज़ पढ़ने का, तो सुन्नत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मर्द जो है वो टोपी पहने, लाजमी हिस्सा नहीं है। लेकिन औरत के लिए नमाज़ पढ़ते वक्त उसके सर से लेके पांव तक हर चीज़ होनी चाहिए, इसको हमने देख लिया। और आप देखिए कि जितना नमाज का लिबास कपड़ा हमारा कंफर्टेबल होगा उतना हमारी नमाज में खुशी होगा। बाद दफ़ा हाफ स्लीव्स में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पूरा वक्त कपड़ा दुपट्टा ही खींचते रहते हैं कि कहीं से कोहनी ना खुल जाए, कहीं से बाजू ना खुल जाए। बाज़ दफ़ा चिपके हुए कपड़े हैं, आजकल जो फैशन चलते हैं उसमें आप देखें कि साइड से चौक्स इतने खुले होते हैं कि कमर खुल गई। फिर बाज़ दफ़ा जो लोग पैंट्स और शर्ट्स में नमाज़ पढ़ती हैं, जो बच्चियाँ, तो वो इतनी छोटी शर्ट्स हैं, जूँ ही रुकू में गई तो पीछे से इतनी कमर उठ गई, सतर ख़त्म हो गया। आपका सतर खुलने का मतलब ये कि आपका रब्ता टूट गया नमाज से। तो कम अज़ कम नमाज की हद तक इंसान का लिबास ऐसा हो कि जो उसके दिल में अल्लाह ताला की खशियत और खुशू को पैदा करे। जब खड़े होने लगे एक लम्हे के लिए देख लें कि क्या मैं ठीक हूँ, मेरा हुलिया ठीक है। और सारी मुश्किलों का हल ये है कि आप अगर एक लिबास ऐसा बना लें, बहुत अच्छे ऐसे अबायास भी मिलते हैं, मैं इजिप्ट में गई, मैंने वहाँ देखे कि एक पूरा एक ही कपड़ा होता है, सर से पाँव तक वो उसको पहनते हैं और उसी के पीछे दुपट्टा सिला होता है, वो उसके अंदर मतलब सारे बाल भी चले जाते हैं और रैप कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल कोई सवाल है इस बारे में आपके जहन में? यह बात वाज़े है, ठीक है? दस्ताने पहन के या निकाब पहन के, यानी जानबूझ के ये नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हालात में ग्लव्स भी पहनते हैं और निकाब भी करते हैं तो हत्तुल बसा कोशिश कीजिए कि नमाज़ वहाँ पढ़ें कि जिसमें फिर आप चेहरा भी खोल सकें और हाथ भी खोल सकें। जी आप जी देखिए कि इन्होंने सवाल किया कि मर्दों के टखनों का क्या हुक्म है, तो इसके बारे में देखिए कि एक ईमान वाला मर्द जिस हाल में नमाज में होता है ना, उसी हाल में वो बाद में भी होता है। ये हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि आम हालात में तो पैंट्स पूरी नीचे तक होती हैं और नमाज में फ़ोल्ड कर ली जाती हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कैफियत तो हो सकती है, लेकिन मतलूब ये नहीं है। हर मुसलमान मर्द की एक पहचान ही ये होनी चाहिए कि उसके टखने खुले हों, तो मुमकिन हद तक खुले रखे, और अगर नहीं खुले हुए तो फिर नमाज में खोल लें, लेकिन खुलना होगा। आज देखिए कि मर्दों के टखने ढक गए और औरतों के खुल गए, है ना जंग लगी हुई। आप पहले तो टखनों की बात करते थे, मैंने तो अब औरतों के घुटने भी खुले देखे, मुसलमान औरतों के। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मुसलमान औरत की नंगी टांगे नहीं देखी। तीसरा, लाइव इन पर्सन देखना, और एक मुझे एक ऐसी जगह जाना पड़ा कि मैंने तो वहाँ कसीर तादाद देखी कि मैं घबरा गई कि ये क्या हो गया, और वो न जाने क्या नया कोई फैशन निकल आया। कल लोग बाजू एक उतारेंगे, अब वो भी उतार देंगे। लोग आपसे एक टांग पहना के एक चढ़ा लेंगे, अब वो भी पहन लेंगे। कभी इंसान सोचे तो सही कि मैं लग क्या रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल खुद से कर ले कि मैं इस वक्त लग क्या रही हूँ, तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है। अब देखिए कि मुसलमान औरत आम औरतों से बहुत आला है, बहुत अफजल है। हम कुछ भी पहने, कुछ भी करें, कुछ भी हमारे एक्शंस हों, अगर उसमें हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दें कि मैं अल्लाह ताला की निगाहों में इस वक्त क्या लग रही हूँ, तो उम्मीद है कि हमारा बाकी हाल हुलिया भी जो है वो ठीक हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। चलिए अगला चैप्टर से इंशाल्लाह देखेंगे। जी अगले चैप्टर जो है मस्जिद के काम, इसमें से हम कुछ बातें अपने लिए नोट करेंगे। पहली बात हमने इससे सीखी कि अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में घर की खुशखबरी है। और यहाँ देखिए मस्जिद के साथ फिर आप हर उस जगह को भी देख सकते हैं कि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, और इसमें फिर हर वो जगह जो दीन के लिए आप रखते हैं उसकी भी इंशाल्लाह ताला खुशखबरी है। अगली चीज़ हमने इसे सीखी कि पसंदीदा तरीन मुकामात अल्लाह को मस्जिदें हैं, और बाज़ार इंतहाई नापसंदीदा। कितने लोगों की पसंद अल्लाह की पसंद से मिलती है, कितने लोग हैं जिनको बाज़ार बहुत नापसंद है, सच बोलिएगा, कहाँ दिल लगता है। चलें यहाँ की बात नहीं करती, पाकिस्तान जा रहे हैं 1 महीने के लिए, ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है, बाज़ारों में गुजरता है, माने कि ना माने वो। जी तो अल्लाह ताला हमारा दिल बाज़ारों से उठा दे। दुआ मांगे ज़रा अपने लिए सब, सिर्फ चुपके से कह अल्लाह मेरे दिल से बाज़ार की मोहब्बत निकाल दे। जी इनका सवाल एक आया कि नमाज में अक्सर छोटे बच्चे आकर डिस्टर्ब करते हैं, तो बात करना पड़े तो बात कर सकते हैं? नहीं, ये मसला आगे आ रहा है, फिर वहाँ आपको इसका जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अगली बात इस चैप्टर से जो हमने सीखी वो क्या है कि जो शख्स दिन के पहले हिस्से में या दिन के आखिरी हिस्से में मस्जिद में जाए, अल्लाह ताला उसके लिए बहिश्त में मेहमानी तैयार करता है। यानी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में पता नहीं क्या कुछ तैयार करवा रहा होता है। अब मर्दों के लिए तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, कम से कम हम औरतों का भी अगर ऐसा ताल्लुक हो, जैसे अगर घर में से शौहर या बाप या भाई मस्जिद में जाते हैं, तो फजर या ईशा, ये दो नमाज़ें जो थी सहाबियात भी फजर मस्जिद में जाके पढ़ा करती थी, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है इंसान कर सकता है। अगली चीज़ इसमें हमने सीखी कि वुज़ू करने के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे बंदे का बचपना जाहिर हो। यानी बाज़ लोग हदीस के जो लफ्ज़ हैं वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि जब तुम वुज़ू करके मस्जिद जाओ तो एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथों की उंगलियों में ना डालो, बेशक इस वक्त तुम नमाज ही में होते हो। ये क्या बात है, ये हाथ, ये क्या फीलिंग आती है, लेयर मूड की कैफियत आती है ना। और इससे एक और बात हमने सीखी कि वजू करते ही बंदा हालत नमाज में चला जाता है, तो फिर उसके बाद गीबत कर सकता है। हाँ, वजू करने के बाद नमाज तक पहुंचने में हमारे कितने इम्तिहान होते हैं, फ़ोन आ गया तो वो आधा घंटा उसमें लग गया, कोई बात करने लगा तो उससे करा। यानी जू ही वजू करें ना, तो उसके बाद बस फील करें कि आप नमाज की हालत में हैं। फिर अगली चीज़ हमने इस बात से सीखी कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज 1,000 नमाजों के बराबर है, और बैतुल्ला में एक नमाज دوسری مسجدوں کی نسبت 1 لاکھ نمازوں سے بہتر ہے، اور مسجد نبوی 1,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں نماز ادا کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب 1,000 نمازیں وہاں پڑھ لی تو اب پھر بعد میں آ کے 1,000 نمازیں اپنی چھوڑ دیں؟ دیکھیں، ثواب میں برابری ہے، فرض ساقط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک چیز ہم نے سیکھی کہ فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا اور نفل نماز کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ فرض میں اجتماعیت ہوگی، مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے، لیکن جو نفل نمازیں وہ گھر میں پڑھیں گے، اس کا ایک تو فائدہ کہ ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ گھروں میں بھی تو کچھ برکت رہے۔ اگر ہر نماز باہر ہی پڑھی جائے اور کسی گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، سب مرد ہی رہتے ہیں، تو اس گھر میں تو پھر بالکل بھی اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت آئے گی۔ اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یعنی مسجد کا ارادہ کرنا۔ اگلی چیز، پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی کھائے تو پھر برش کرے یا مسواک کرے اور اس کی بدبو کو ختم کرے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ کیا کہ جب پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں جانا پسندیدہ نہیں بدبو کی وجہ سے، تو سگریٹ پینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شخص کے تو دور سے اس کے کپڑوں سے بھی بو آتی ہے۔ اسی لیے پھر ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر کسی کو بیماری کے لیے یہ علاج کے طور پہ کھانا پڑے لہسن، تو آ سکتا ہے۔ اب یہ نہ کوئی کرے کہ چونکہ اب لہسن کھا لی ہے تو اب نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو پھر صاف کر لیں، دانت صاف کر لیں، تاکہ دوسروں کو آپ سے اسمیل نہ آئے۔ اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ مسجد میں تھوکنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، اگر کوئی تھوک دے تو اس پر مٹی ڈال کے کفارہ کر دے، یعنی اس کو چھپا دے۔ اب مٹی والی کچی مسجد ہے تو مٹی ڈالیں گے، اور آج اس دور میں یہ ہے کہ پھر اس کو صاف کیا جائے۔ اگلی بات یہ کہ مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن نماز میں نہیں، نماز میں نہیں، مسجد میں۔ یعنی اگر آپ کہیں سفر پہ ہیں یا کوئی راستے میں یا کوئی تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر اسٹریچ کرنا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں، اور نوجوان مرد بھی سو سکتا ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہم نے سیکھی کہ مسجد میں خرید و فروخت منع ہے، یعنی نماز وہ جگہ جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، جس کو آپ مسجد کا پریئنگ روم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی تجارت اگر کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا دی کہ تمہاری اس چیز میں برکت نہ ہو۔ ایک شخص نے اونٹنی کا اعلان کروایا تو آپ نے کہا لا ردہ اللہ علیہ، اللہ اس کو کبھی واپس نہ لائے۔ اب یہاں دیکھیے، بعض ممبروں پہ سارے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں بچہ گم ہو گیا ہے، اس کے آ جائیں، نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، مسجد میں اس طرح کے اعلان نہیں ہونے چاہیے، کسی کی گمشدگی کے، کسی کی تجارت کے، ایڈورٹائزمنٹ کے۔ مسجد اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی الگ روم ہے، جیسے یہ روم جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ایک الگ روم ہے، اس کے اندر ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، آ کے بیٹھتی ہیں، یہ اور چیز ہے۔ لیکن خاص طور پہ جو مسجد کا ممبر ہے یا جہاں مسجد نماز کے لیے ادا ہوتی ہے، پھر وہاں ایسے کوئی اعلانات نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ جب کوئی مسجد کے لیے نکلے باوضو ہو کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا احرام باندھنے والے جتنا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے وضو کر کے نکلیں اور مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب ہے جیسے اپنے احرام باندھا اور حج کا۔ کتنا آسان ہے یہ عمل، اور تھوڑی سی صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی کہے کہ اچھا چونکہ ایسا کر رہا ہوں تو پھر اب حج کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہیں چلے جاؤں دن میں، تو یہ بات نہیں۔ دیکھیے، جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں نا، اسے فرض ساقط نہیں ہوتے، تو فرائض بہرحال اپنی جگہ ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ اجر ہے۔ اگلی بات سیکھی کہ جو وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پہ رہتا ہے۔ हमें कितनी जल्दी होती है नमाज़ पढ़ते ही, सलाम फेर के झटक से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कितने तो फ़ोन ही मिस कॉल्स में आ चुके होते हैं। सारी फ़ोन कॉल उस वक्त आती है जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, और जान पे बनी होती है जित नमाज़ पढ़ने के बाद जितनी देर आप अपनी जगह पे बैठे जिक्र अस्कार करेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, तो फरिश्ते दुआ देते हैं कि अल्लाह इस पर रहमत कर, अल्लाह इस पर रहम कर। जब तक नमाजी नमाज़ के इंतज़ार करता है तो वो नमाज ही में होता है, यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए अगर आप बैठे रहते हैं अपनी जगह पे तो आप इसी हालत में कि जैसे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। फिर अगली चीज़ इससे हमने सीखी कि जो जितनी दूर से चल के मस्जिद में नमाज के लिए आता है उसके एक एक कदम को लिखा जाता है। हम कहते हैं कि दूर से आएंगे चलो छोड़ो घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन अजर मिलेगा ना। बनू सलमा के कबीले ने मस्जिद नबी के करीब मूव होना चाहा, तो आपने कहा नहीं, दिया रुकुम दिया रुकुम, तुम्हारे घर तुम्हारे घर, तक तुबु आसार रुकुम, तुम्हारे निशाने कदम लिखे जाते हैं, जितने कदम चल के आओगे उतना ही तुम्हें अजर मिलेगा। फिर अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि मस्जिद का नमाजी अल्लाह ताला की रहमत के साए में होता है। सात किस्म के लोग हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। कौन कौन से लोग? अदल के साथ हुकूमत करने वाला यानी आदिल हाकिम, फिर वो जवान जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहा, नमाज़ पढ़ के निकला फ़ौरन आने के लिए बेताब था, और चौथे वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बिछड़ते हैं, पांचवा वो जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंखों से आंसू बह जाएं, छठा वो शख्स जिसे ख़ानदानी खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, गुनाह की दावत दी लेकिन उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और सातवां वो शख्स जिसने अल्लाह के खौफ से कुछ दिया किसी को, यानी किसी जब अल्लाह के लिए कुछ दिया तो दूसरे हाथ को भी पता ना चला। और लोग इस तरह की कोशिशें करते थे कि बाज़ दफ़ा, यानी ये हदीस इस तरह नोट करते थे कि इतने अंधेरे में देते कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, यानी हालांकि ये किस तारा था कि छुपा के दो अल्लाह के रास्ते में। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान जितना अल्लाह के रास्ते में मतलब छुपा के देगा, और ख़ास तौर पे नफिल सदकात नफिल चीज़ें, उसको उतना ही अजर होगा। फिर अगली चीज़ है कि मस्जिदों को पाक साफ़ रखना चाहिए, इसको तो मेरा लिए बड़ा बड़ा लिखवाना चाहिए, मोटा मोटा। हाँ, फिर मस्जिदों में खुशबू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगली बात, मस्जिदें सादी होनी चाहिए, बहुत फैंसी मस्जिदों का हुक्म नहीं है। आपने फरमाया कि क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिदों की खूबसूरती पे फ़ख्र करेंगे। अगली बात कि जो अंधेरे के वक्त नमाज़ों के लिए मस्जिद में चलकर जाते हैं तो क़यामत के दिन उनको पूरे नूर की खुशखबरी है। फजर और ईशा दो नमाज़ें हैं ना, जो अंधेरों में चल के जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको नूर देगा, रोशनी देगा। फिर अगली चीज़ हमने इस बाब से सीखी कि मुशरिक भी किसी वजह, अगर कोई वजह हो तो वो मस्जिद में जा सकता है, मतलब मुशरिक नॉन मुस्लिम्स लोग मस्जिद में जा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को मस्जिद के मिंबर से बांधा था, सुमामा बिन असाल, हालांकि वो उस वक़्त नॉन मुस्लिम थे। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि मस्जिदों की देखभाल करना ईमान की अलामत है, क्योंकि अपने घरों को तो सब सजाते हैं लेकिन अल्लाह के घर को साफ़ रखना किसी बंदे के अंदर ईमान का होना इससे साबित होता है। फिर अगली चीज़ इस हिस्से से हमने सीखी कि कब्रिस्तान पर मस्जिद नहीं बन सकती, यानी कब्रों के ऊपर जाके नमाज़ पढ़ना उसकी इजाज़त नहीं है, और रेस्ट रूम्स हमाम यानी शावर लेने की जगहों पे भी नमाज़ नहीं हो सकती। फिर अगली दुआ एक इस हिस्से में हमने सीखी, आप मेरे साथ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मफ्तहली अबवाब रहमती का, इसका तर्जमा है कि ए अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। ये दुआ मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे और हमें भी पढ़नी चाहिए। कितने लोग हैं जो सुबह इस रूम से एंटर होते हुए ये पढ़ते हैं शऊर के साथ? माशाल्लाह, आधे को लोग पढ़ते हैं। इसी तरह मस्जिद से निकलते वक्त भी एक दुआ है, बल्कि ये मस्जिद में दाखिल होने की एक और दुआ याद की, पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाही वस्सलामु अला रसूलिल्लाही अल्लाहुम्मग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तहली ابوابا رحمتی کا. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو رحمتیں سمیٹیں گے نا. اسی طرح ایک تیسری دعا بھی آپ نے کہا کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو باقی سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا. اس کو بھی پڑھتے ہیں مل کے. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ تین میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک یاد کر لیں، دو لکھ کے رکھ لیں، کبھی کوئی پڑھ لیں کبھی کوئی. اسی طرح اگلی بات سیکھی کہ مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے نبی کیا دعائیں مانگتے تھے. مل کے پڑھتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. دوسری دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی کا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں تھا ابواب رحمتی کا، داخل ہوتے ہوئے رحمت ہے، نکلتے ہوئے فضل ہے. کیوں؟ جب مسجد میں آئیں گے نا تو اللہ کی رحمتیں لیں گے، اور مسجد سے جائیں گے تو فضل کیا ہے؟ دنیا کا مال، یہ جو رزق حلال کا کمانا اور دنیاوی فائدوں کا حاصل کرنا، یہ فضل ہے. تو جب مسجد سے نکلیں تو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو مجھے میرے باقی کاموں میں برکت دے. جو بھی کام آپ دنیا کا کرنے جا رہے ہیں، مسجد میں آئے تو کہ سب چھوڑ آئے ہوں، بس اب مجھے تیری رحمت چاہیے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے. آمین. آخری بات جو اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی وہ کیا تھی؟ کہ مسجد میں اونچی آواز بلند کرنا منع ہے. آج تو نہیں بلند ہوتی مسجدوں میں آوازیں. میں نے کسی مسجد کا ذکر کیا کسی سے اور انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ وہ مسجد ہے جہاں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسے تعارف ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں صحیح طرح کی مسجدیں بن جائیں اور بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بنیں. تو الحمدللہ یہاں چیپٹر پورا ہوا. اللہ تعالی ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون. یہ کہہ رہی ہیں کہ کین یو ٹیل اس دی کریکٹ وے ٹو آفر نماز لائک ہاؤ ہولڈ ہینڈ. جی انشاءاللہ ہم ایک دن ورکشاپ کریں گے اس پہ پوری، جس میں ہم یہاں پورا وضو بھی کر کے دیکھیں گے اور نماز بھی پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بیفور آئی جوائن دس کلاس آئی آلسو لائک اونلی شاپنگ بٹ الحمد للہ بیکاز دس کلاس آئی چینجڈ. چلیں شکر ہے. وہ دکاندار تو بہت ناراض ہوں گے ہماری کلاسوں سے. ہیں